बोरीवली के चैतन्य फुलवाड़ियों की दीदी के प्रति भाव है। उषा की जब फैली लाली, अंधियारा मिटा तब शकल जगत का, गीता का शत मर्म बताकर, गीता का शत मर्म बताकर ज्ञान उजाला जग में लाई। मृद वचनों की मधु बोली से सबके दिल पर है छाई। ऐसी है वो शक्तिदानी पथ प्रदर्शक दीदी हमारी, स्वागत में जिनके दामन भरकर स्नेह पुष्प सजोकर लाई, स्नेह पुष्प सजोकर लाई। आदरणीय उषा दीदी, आज की क्लास का विषय है बेफिक्र बादशाह। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद के मधुबन धरनी पर आते ही बेफिक्र तो बनी गए। है किसी को कोई फिक्र? हाँ, तीन दिन के अंदर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया। हाँ, वही बॉम्बे की धरनी पर होता तो रोज फिक्र होता है ना, है? हाँ, लेकिन यहाँ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर के जाएंगे तो कुछ समय तक तो इसकी रिफ्रेशमेंट बनी रहेगी। और ये एक बाबा के घर में आते ही एक ब्लेसिंग का अनुभव होता है कि सचमुच बाबा के घर में आते ही कैसे मन एकदम अनेक प्रकार के व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली जब तक मन व्यर्थ से मुक्त नहीं होता है तब तक चिंता बनी रहती है, फिकर बनी रहती है। लेकिन व्यर्थ से मुक्त हो गए यहां आते ही, ये सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि यहां आते ही जैसे ही व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो गए तो बेफिक्र हो गए। वहां जाते ही फिक्र आरंभ हो जाती है क्योंकि व्यर्थ शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा बार बार हमें ये प्रेरणा देता है कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। उस दिन दादी जी ने भी यही प्रेरणा दी कि व्यर्थ से भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि तभी यथार्थ रूप में मनसा सेवा भी कर पाएंगे, नहीं तो कैसे होगी। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए सबसे पहली बात जो आवश्यक है वो है फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि बिना फुल स्टॉप लगाए बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकते हैं। तो फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? कोई चीज तो नहीं है उठा करके लगा दिया दिमाग में और फुल स्टॉप हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो फुल स्टॉप का भाव क्या है, इसी बात पर चिंतन चल रहा था कि कोई चीज तो नहीं है कि चलो भाई बिंदी उठाई लगा दिया और लग गई। तो जब भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे फुल स्टॉप लगाओ तो बाबा का भाव क्या है और कैसे लगाएंगे फुल स्टॉप? क्योंकि जितना जल्दी ये बिंदी लगी उतना जल्दी बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। माना चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी बातें हो, कैसे भी लोग हो, उन सब के बीच में ही रहना है, वहां से भागना तो है नहीं हमें, लेकिन देखते हुए सुनते हुए समझते हुए भी फुल स्टॉप लगाना है। कैसे लगाएंगे कैसे लगाएंगे फुल स्टॉप? बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ये सोच करके हर एक का अपना अपना पार्ट है, ड्रामा कल्याणकारी है। फुल स्टॉप का भाव बाबा का है परिवर्तन, संकल्पों में परिवर्तन, कुछ अल्टरनेट। और अल्टरनेट करने के लिए उस वक्त योग में बैठना नहीं होता है, क्योंकि योग में बैठेंगे तो ज्यादा व्यर्थ का तूफान आरंभ हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन, उस समय विशेष कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ, है ना, कर्म योगी बन जाओ। क्योंकि जितना कर्मणा में बिजी करेंगे अपने आप को, तो उसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, चाहिए सफाई करो, है ना, तो वो सफाई करते करते यहां भी सफाई हो जाती है। तो इसीलिए परिवर्तन यानी ये चेंज करने की जो कला है उसको एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, जितना फास्ट इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो सूक्ष्म में परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होता, तो कम से कम स्थूल का परिवर्तन अपना लो, उसमें दिमाग जैसे चलने लगेगा कि कैसे करना है, तो वो चीज अपने आप भूल जाती है। इसलिए परिवर्तन शक्ति स्थूल में और सूक्ष्म में धीरे धीरे अपने आप आने लगती है। दूसरी बात, निश्चय बुद्धि बन जाना। निश्चय किस बात में, कि जैसे कहा कि जो हो रहा है इसमें कल्याण है, और उसमें निश्चय बुद्धि बनना, जरा भी ये डाउट न आए कि अकल्याण तो नहीं हो जाएगा, नहीं, कल्याण होना ही है ना, ड्रामा हमारा कल्याण करेगा ही, है ना, दृढ़ता इसमें। तो जितना निश्चय बुद्धि हो करके दृढ़ता को अपना देंगे, उतना ही फुल स्टॉप सहज लग जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा की बातें याद आती है कि बेगरी पार्ट में भी बाबा बेफिकर बादशाह था, क्योंकि बाबा को निश्चय था, निश्चय यही था कि मैं तो निमित्त हूं, यज्ञ चलाने वाला तो बाबा है ना, तो मैं क्यों फिकर करूं। तो चाहे 350 को खिलाना होता था तो भी बाबा उसी निश्चय बुद्धि बन करके कि पहला भोग किसको लगना है, बाबा को ही लगना है। और भक्ति में भी ये नहीं हुआ कि भगवान कभी भूखा रहता है तो हम कैसे रहेंगे। माना आपको अगर परिवार में 5 लोगों को खिलाना हो और पैसा न हो तो कितना टेंशन हो जाए। यहां 350 थे, घर में 4 आना नहीं, अनाज का दाना नहीं, और फिर भी बाबा बेफिकर बादशाह, इतना निश्चय बुद्धि। क्योंकि कोई भी पेपर ड्रामा में आता है तो वो सबसे पहले हमारे निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करता है, और इसीलिए व्यर्थ शुरू हो जाता है। तो जितना निश्चय का फाउंडेशन हमारा पक्का होगा उतना हिलेंगे नहीं, दृढ़ता संपन्न अभ्यास शुरू हो जाएगा। और यही तो तपस्या है। तपस्या माना क्या, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो निश्चय बुद्धि बनते हुए, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, उसमें कल्याण देखना फुल स्टॉप लगा देना है। तीसरा, फुल स्टॉप माना, महसूसता की शक्ति को अपनाना, क्योंकि ड्रामा में कोई भी सीन अगर आती है, कल्याण कैसे है उसमें, तो वो मुझे कुछ न कुछ सिखाने आ रही है, अनुभवी बनाने आई है। तो अनुभवी बनना, ये महसूस करना कि ड्रामा इस सीन से मुझे कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है और उसमें अनुभवी बनाना चाहती है, ये महसूसता जब होने लगे कि क्या मुझे अनुभवी बनना, किस रूप से बनना है, कौन सा पाठ सीखना है, कौन सा पाठ पढ़ना है, तो अंदर में व्यर्थ नहीं चलेगा, लेकिन उसको रियलाइज करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। और जब कोई बात प्राप्ति की होती है, सीखने की होती है, तो खुशी होती है, व्यर्थ नहीं चलता है वहां पर। खुशी माना है बेफिक्र बादशाह। तो इसीलिए मुझे ड्रामा की ये सीन क्या सिखा रही है, क्या समझा रही है, किस बात में मुझे अनुभवी बन जाना है, ताकि आने वाले समय में कोई भी बात मुझे धोखा नहीं दे सकती है। जैसे ही ये महसूस होने लगे, खुशी होगी कि हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने का अनुभव करेंगे। ये भी महसूस होता है इसमें कि ड्रामा के इस सीन में भाग्य विधाता मुझे कोई न कोई भाग्य प्रदान करना चाहता है, क्योंकि अनुभवी बनेंगे तब वो भाग्य प्राप्त होगा। अगर किसी को बिना एक्सपीरियंस कैसे ही भाग्य दे दो तो क्या करेगा, वेस्ट कर देगा ना। लेकिन कोई समझदार हो जाता है, उसके बाद अगर उसको वो चीज दो तो उसका सदुपयोग करता है। तो ड्रामा में भाग्य विधाता भी मुझे कोई ना कोई विशेष भाग्य देना चाहता है, और वो भाग्य देने से पहले मुझे समझदार, मैच्योर बनाना चाहता है, ताकि मैं उस भाग्य का दुरुपयोग न करूं और अपने ऊपर बोझ न चढ़ाऊं, लेकिन उसका सदुपयोग करते हुए और कमाई करूं, यानी उन्नति को प्राप्त करूं। भाग्य से ही तो उन्नति होती है ब्राह्मण जीवन में। तो ड्रामा में भाग्य विधाता मुझे क्या भाग्य देना चाहता है, जब वो उस भाग्य को आप देखना शुरू करेंगे तो खुशी होगी, तो फिकर नहीं होगी, लगन लगेगी उसको प्राप्त करने के लिए, तो बेफिकर बादशाह हो जाएंगे। बादशाह माना खुशी में रहने वाला, बादशाह माना उमंग उत्साह में रहने वाला, बादशाह माना उस रॉयल्टी में रहने वाला जिसके पास हर प्रकार की समझ होती है। अगर कोई राजकुमार को ऐसे ही बैठे बैठे भाग्य मिल जाए विदाउट एक्सपीरियंस तो क्या करेगा, गंवा देगा, उड़ा देगा। तो बाबा तो मुझे, मेरे ऊपर बोझ नहीं चढ़ा सकता है, भगवान जब मुझे देना चाहता है तो मुझे एक्सपीरियंस्ड बना देता है। इसलिए कल्याण है, यही कल्याण है। और इस कल्याण को समझते हुए निश्चय बुद्धि बन जाना,
साथ ही साथ ड्रामा के अंदर मान लो कि मेरे सामने कोई ऐसी बात आई है तो शायद वो मुझे अवसर प्रदान करना चाहती है, आगे बढ़ने का अवसर देना चाहती है। अंतिम समय में अगर वो बात आए तो अवसर तो होगा नहीं, उस समय तो फाइनल डिसीजन होगा, पास या फेल। कितने हम लकी हैं कि समय से पहले ये बात जो मेरे सामने आई ये मुझे और अपने आप में सुधार करने का एक अवसर दे रही है और अच्छी तरह से मैं अपने जीवन को जो थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है उसको भी निकाल करके सुधार ले आऊं, ये अवसर बाबा मुझे दे रहा है। तो अवसर तो भाग्यशाली को ही मिलेगा। इस तरह अलग अलग ढंग से अगर उसको महसूस करेंगे तो फिक्र नहीं होंगी, चिंता नहीं होंगी, हाय क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना? लेकिन बेफिक्र हो जाएंगे, उसमें और भी हमारा निश्चय दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, है ना? मम्मा की बात तो आपको सुनी ही होंगी, सुनाई भी होंगी, हलवे वाली बात तो सुनी है ना मम्मा की। जब ये पूछा कि आपको व्यर्थ संकल्प नहीं चला, मम्मा को किसी ने पूछा आपको व्यर्थ संकल्प नहीं चला कि पार्टी तो चली गई अब हलवा बना के फायदा क्या, क्या कहा? हाँ वही बस स्टॉप पर, भाई लोग तो चले गए, तो किसी ने बाद में मम्मा से ये पूछा कि मम्मा आप इतने धैर्यता से कैसे बना रही थी, आपको व्यर्थ संकल्प नहीं चला कि मेरी ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाएंगी? हाँ तो मम्मा ने कहा मुझे कहने वाला कौन था, मुझे कहने वाला कौन था? क्या उसको पता नहीं था कि बस का टाइम हो गया है ना? और अगर उसने मुझे श्रीमत दी है तो उसका मतलब उसके पास इतनी शक्ति है जो बस को लेट कर सकता है। ये मम्मा का उत्तर था कि अगर उसने मुझे श्रीमत दी है तो उसके पास ये भी शक्ति है संकल्प की कि वो बस को लेट कर सकता है। ये है निश्चय बुद्धि। तो वहां चिंता उत्पन्न ही नहीं हो, हाय क्या होगा। हम लोगों को अगर कोई हलवा बनाने के लिए कहे लास्ट मोमेंट ऐसे तो हम शायद शायद बाबा को भी एक ऐसे, बाबा अब तो टाइम हो गया ना, अभी क्या करेंगे हलवा बना के ना? देखो हमारी मेंटालिटी और मम्मा की मेंटालिटी में, जी बाबा जी बाबा। और आज के कोई भी भाई या बहन को अगर कहा जाए तो कहे, अगर नहीं भी बोला चलो बाबा के सामने तो भी अंदर में चलेगा तो बाबा लास्ट मोमेंट कहता है, और अगर फटाफट बनाना शुरू तो आधा कच्चा पक्का बना कर दे देंगे चलो। मम्मा ने कितना धीरे से वो धैर्यता से सेकती रही सेकती रही सेक, पूरा रचना अच्छा बना। और सोचो जब वो बच्चों के हाथ में वो हलवे का डब्बा आया होगा उस समय उनकी स्थिति कैसी होगी, वो हलवा प्राप्त करके कितनी खुशी हुई होंगी, अंदर से कितनी कृतज्ञता अंदर में भर गई होंगी। तो बाबा भी जब मुझे कुछ देना चाहता है चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियों विपरीत बातें हो, लेकिन उसमें भी जब वो मुझे देना चाहता है तो उस समय जो अंदर की कृतज्ञता है इतनी अधिक हो जाती है कि वाह बाबा, है ना, तभी ये गीत गा सकते हैं, वाह बाबा वाह, तभी ये बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति में जब ये गीत निकलता है ना, वाह बाबा वाह, जैसे पूरा थैंक्स के साथ में अंदर से एक शुक्रिया के साथ में जब ये गीत निकलता है और उस समय की मन की स्थिति इतनी एकदम संतुष्ट, इतनी ऊंची स्थिति में हूं, ये है बेफिक्र बादशाह की स्थिति। ये स्थिति का अनुभव करने के लिए छोटी छोटी बातों में भी, छोटी छोटी बातों में भी वाह बाबा वाह गा के तो देखो, वाह बाबा वाह गा के देखो कैसा लगता है। मुझे याद आता है एक भाई है ना, उसने ये अभ्यास शुरू कर दिया, वाह बाबा वाह वाह बाबा, उसके सामने थाली भी आती है ना, खा लें के पहले दृष्टि, वाह बाबा वाह ब्रह्मा भोजन मिला है, वाह बाबा वाह, एक जैसे थैंक्स के अंदर से। अगर मानो के भोजन में नमक कम होता है ना तो भी कहता वाह बाबा वाह, है ना, हम कर सकेंगे ऐसा? अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो कि नमक कम हो मिर्ची ज्यादा हो तो चिल्लाने के बजाय हाँ क्या करेंगे, वाह बाबा वाह, अभ्यास शुरू करो तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिकल बेफिक्र बादशाह बनने का एक अनुभव शुरू होगा। ये नहीं कि जानबूझ करके काम बिगाड़ के फिर कहो वाह बाबा वाह, है ना, लेकिन कोई भी हालतें हो, कोई भी बातें हो, बातें तो आती ही रहेंगी, है ना, विपरीत बातें और बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें भी जैसे हमेशा दादी गुलजार कर, इसमें भी हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी युक्ति है कि बाबा ने जो ये गीत सुनाया सिखाया है ना हमें, ये नहीं कि बाबा की जब मुरली चलती है और बाबा उस समय वाह बाबा वाह करते रहे हम और प्रैक्टिकल सारे दिन में एक बार भी हमें याद नहीं आए वाह बाबा वाह, है ना, कभी प्रैक्टिकल जब विपरीत परिस्थिति में करके देखो अंदर में कैसा एक जोश आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, वाह बाबा वाह कहते ही जैसे बाबा ने कहा विपरीत बातें भी अनुकूल हो जाएगी, इतनी इस लाइन में ताकत है कि नेगेटिव दृश्यों में भी अगर आप वाह बाबा वाह का गाना आरंभ करो मनी मन तो वो विपरीत बातें भी अनुकूल यानी नेगेटिव बातें भी पॉजिटिव बन जाएगी। भगवान का वरदान है, इस वरदान को महसूस करो। तो जितना इस गीत का अभ्यासी बन जाएंगे तो गुस्सा खत्म, टेंशन खत्म, नेगेटिविटी खत्म और निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। बेफिक्र बादशाह का यही तो आधार है। तो सचमुच जो बाबा की बातें हैं इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितना जीवन के अंदर किया होगा ना उतना उसका आनंद महसूस कर पाएंगे कि सचमुच वो छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें भी हमारी अवस्था को एक रस बनाने के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होती है ब्राह्मण जीवन के अंदर। और एक एक कदम जैसे आगे बढ़ते जाते अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर, बाकी अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा सारे दिन में कभी खुशी, कभी उदासी, कभी फिकर, चिंता, ये वो गुस्सा, तो कहां से हम आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए इसी को ही अपना करके देखो कि चलो मैं एक ही बात को अपना करके देखती हूँ कि हर बात में मैं अंदर से जैसे शुक्रिया बाबा करते हैं, ऐसे वाह बाबा वाह करते जाए और देखो कितना एक एक सिन वाह वाह में परिवर्तन होती जाएगी। और तब ऐसा लगेगा कि जीवन में जैसे विघ्न नाम की चीज नहीं, निर्विघ्न स्थिति हमारी सहज बनती जाएगी। अभी विघ्न आता है, युद्ध करना पड़ता है, हम उसमें पास होना पड़ता, कभी फेल हुए तो निराशा आ जाती है, उत्साह कम हो जाता है। लेकिन ये जो बाबा की छोटी छोटी टिप्स भी दी गई है उसका भी प्रयोग करते जाओ तो कैसे उड़ने का अनुभव करेंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे सारी बातों को सहजता से क्रॉस कर दिया और एकदम दृढ़ हो गए उसी बात में, अवस्था हमारी दृढ़ता वाली हो गई। तो क्या सिखाने आई है ये बातें, हमें क्या देने आई है, क्या सिखाने आई, क्या देने आई, कैसे भाग्य विधाता कुछ दे रहा है हमें, उसको स्वीकार करना है, उसके लिए वाह वाह के गीत गाए। तो ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है और जब उस रूप में देखेंगे आप तो जीवन इतना सहज और सरल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेडनेस ही खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण जीवन माना ही सहजता, इजी लाइफ, ना इजी लाइफ, पुरुषार्थ में इजी नहीं लेकिन अवस्था हमारी इतनी इजी हो जाए, सहज मुड़ सके, जहां मुड़ना चाहो, जैसे मुड़ना चाहो ऐसे मुड़ जाए। इतना सतो प्रधान जैसे सोना बनते जाए, जो मोल्डिंग पावर, परिवर्तन करने की शक्ति, माना परिवर्तन करने की मेहनत करने वाले नहीं, परिवर्तन हो जाता है। ऐसी एक बार अगर इसका टेस्ट लग गया ना बेफिक्र बादशाह की स्थिति का, अगर टेस्ट लग गया ना तो फिर हर छोटी बात में भी क्या होगा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह करते हुए इतना नेचुरल बाबा की याद बनी रहेगी। करना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन वो याद सहज स्वतः होने लगेगी। अंदर से जैसे एक प्रकार का एप्रिसिएशन बाबा के प्रति निकलना आरंभ हो जाएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति द्वारा पेपर आ गया तो क्या करेंगे, परिस्थिति में तो चलो वाह बाबा वाह गीत गा लिया, सहज हो गया। कोई समस्या आई तो समझो कुछ दे रहा है मुझे बाबा, ये भी समझ लिया। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके आपके लिए पेपर बन रहा है, उस समय क्या करो, उस समय बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे, वहां गुस्सा नहीं आएगा? पेशेंस को ट्राई कर रहा है, मेरी पेशेंस को ट्राई कर रहा है, फिर कब तक रहेगी? बार बार अगर वो आपकी पेशेंस को ही ट्राई करता रहे तो हिसाब किताब समझेंगे? पेपर अच्छे के लिए ला रहा है, उस पेपर को खत्म करने के लिए या उस हिसाब किताब को भी खत्म करने के लिए जो बाबा ने विधि बताई है, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं देना। वो पेपर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका जमा का खाता कम है, उसका जमा का खाता कम है, तो क्या करेगा? जैसे दुनिया के अंदर किसी के पास बैंक बैलेंस ही न हो तो वो दूसरों के आगे आकर के भाई उससे पैसा मांगने के लिए या उससे मदद मांगने के लिए उसका रास्ता रोकेगा या नहीं रोकेगा? और उसको पता है यहाँ से मुझे मिल सकता है, ये व्यक्ति के पास जमा का खाता अच्छा है, ये तो दे ही देगा मुझे, तो उसका रास्ता रोकेगा या नहीं रोकेगा? भाई थोड़ी मदद कर लो, जिसका जिसके पास खाता ही नहीं उसके पास जाकर फायदा क्या? तो वो व्यक्ति भी अगर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है तो उसको पता है कि मुझे यहाँ से मिलेगा, और उस समय अगर हम भी उसको गाली दे देंगे तो क्या होगा ना? तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ऐसी आत्मा को हमेशा उसका खाता कम है, उसको जरूरी है, इसलिए उस समय उसको दुआएं दे दो, शुभ भावना शुभ कामना दे दो, वो परीक्षा नहीं लेगा फिर आप। उसको जितना चाहिए था मिल गया तो दे दो, तो जितना आप उसको देना शुरू करेंगे तो आप दे नहीं रहे हैं, अपना भी जमा हो रहा है उसमें। तो जब खुद का खाता भी जमा होता है तो क्या होता है फिर? सेटिस्फेक्शन, अपना भी बढ़ रहा हो, क्योंकि यही चीज ऐसी है देने से बढ़ती है, तो मेरा भी बढ़ रहा है, तो मेरा बढ़ रहा है तो उसमें फिकर हो सकती है कोई मुझे? उसमें तो फिर मेरी फिकर ही खत्म, बेफिकर हो जाना है। फिकर मुझे भी इसीलिए हो रही है क्योंकि मेरा खाता कम है, तो भाई समय आ गया और मैं अगर इतने खाते से ही कैसे संपूर्ण बनूंगी, इसलिए फिकर हो रहा है ना। तो तब ये महसूस करो कि देना शुरू करो, शुरू करो। जो दादी ने कहा ना, मनसा सेवा करते जाओ, जितना मनसा सेवा करेंगे आपका खाता भी बढ़ता जाएगा, और तब समय से पहले अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो समय से पहले मुझे अपने आप को तैयार कर देना है, और समय से पहले तैयार करने के लिए उतना देना चालू करना है। देते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, देते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, करके तो देखो, होता ही है। और उस समय जो एक आंतरिक खुशी, आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये हमारी स्थिति को बेफिक्र बादशाह बनाता है। देने से जो सेटिस्फेक्शन मिला, संतुष्टि मिली, और साथ में ऐसे देने वाले जो होते हैं उससे भगवान भी खुश होता है, भगवान भी संतुष्ट होता है कि ये बच्चा तो मेरी आज्ञा पर चल रहा है, जो मैंने कहा उस अनुसार समय पर कर रहा है। तो बाबा का भी दुआओं भरा हाथ मैं अपने ऊपर महसूस कर पाऊंगी, और जब उसको महसूस करने लगेंगे तो बस स्थिति अपने आप हमारी निश्चिंत हो जाएगी, निश्चिंत, कोई फिकर हमें सताएगी नहीं। मनुष्य को फिकर तभी सताती है जब उसका जमा का खाता कम होता है, खर्च ज्यादा हो रहा है और जमा कम हो रहा है, तो टेंशन होगा या नहीं होगा? स्थूल में भी अगर टेंशन हो जाता है तो यहाँ भी अगर टेंशन हो रहा है तो ये संकेत है कि मेरा जमा का खाता कम हुआ है। आज मुझे जमा करना है, और करना है तो कैसे करना है? तो देना शुरू करो, देते जाओ बढ़ते जाएगा, चाहे जिस भी विधि से दे सको, मनसा वाचा कर्मणा, जिस भी विधि से दे सको देना आरंभ करो। तो रात्रि को जब अपना खाता देखते हैं फिर निश्चिंत होकर सो सकेंगे, नहीं तो निश्चिंत होकर सो नहीं पाएंगे। इसको कहते फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप है कि धैर्यता और गंभीरता, फुल स्टॉप माना धैर्यता और गंभीरता, कि जब दूसरों को देना है तो वहां भी धैर्यता को धारण करते हुए गंभीर बनते हुए मुझे देना है, मैच्योरिटी होनी चाहिए देने में भी, पात्र को देखते हुए देते जाओ, है ना? जिसको जो चाहिए उस अनुसार देते जाओ। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को शुभ भावना ही चाहिए, हमारी गुड विशेस चाहिए, किसी को दुआएं चाहिए, परखते हुए जितना धैर्यता के साथ देना आरंभ करो उतना अपना खाता भी बढ़ता जाएगा। और ये विधि संगम की ही है, बाकी कोई समय की ये विधि नहीं है कि देने से बढ़ता जाएगा, इसी समय की विधि है, यही समय को वरदान है। तो यही कल्याण को देखना है कि इसमें किस तरह का कल्याण समाया हुआ है। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि बच्चे जो हीरे की खान में उतरता है ना, हीरे ढूंढने के लिए कहां जाना पड़ता है, कोयले की खान में। अगर वो कोयले को देखना चालू करे तो उसको हीरा दिखेगा नहीं, लेकिन जो कोयले की खान में हीरे ढूंढने जाता है उसकी नजर वो काले काले के ऊपर नहीं रहती है, हीरा जो चमकने वाला कहां से दिखाई देता है उसी पर रहती है। और जब उसको वो हीरा मिलता है तो खुशी, एक हीरा मिला तो भी जैसे खुशी का पारावार नहीं होता है। तो इसी तरह हमको भी हर रोज कितने हीरे बाबा दे रहे हैं, कोयले की खानी है ना, परिस्थिति समस्या ये क्या है, कोयले की खान है ना, कोई गाली दे रहा है वो कोयला नहीं तो क्या है, लेकिन उस कोयले में भी मैं हीरे को देखूं और उसको शुभ भावना दूं, यही तो बड़ी बात है ना। तो वो मेरी स्थिति को हिलाएगा नहीं, लेकिन मैं अपनी शुभ भावना से उसको जरूर हिला दूंगी। हिला देंगे कि नहीं, जो बाबा कहते हैं उसको अनुभव करा देंगे। और आज हर आत्मा अनुभव करना चाहती है तो उसको भी अनुभव कराने की क्षमता आप में आ जाएगी। ये है बेफिकर बादशाह रहने की विधि, इसी का नाम बेफिकर बादशाह है। भरपूरता, बादशाह माना भरपूरता, बादशाह माना भरपूरता के साथ साथ और कोई इच्छा नहीं है उसको प्राप्त करने की। अगर अभी भी ये आत्मा मुझे शांति दे दे, ये आत्मा मेरे को समझे, ये भी अपेक्षा रखी, माना मैं भरपूर नहीं हूं। कई बार कई लोगों की कंप्लेन एक ही होती है, हमें कोई समझता ही नहीं है, हम इतना करते तो भी हमें कोई समझता ही नहीं है, हमारी भावनाओं को कोई समझता नहीं। अब ये अपेक्षा भी जहां रखी तो उसको भरपूर कहेंगे, ये भरपूरता की स्थिति तो नहीं हुई ना। माना मैं अभी तक भी अपेक्षा रख रही कि सामने वाला मुझे समझे, वास्तव में मैं उसको समझूं और उस अनुसार उसको देती जाऊं, बिना ये अपेक्षा रख के कि मुझे कोई समझे। अगर मुझे कोई समझे ये भावना है, माना मैं बादशाह नहीं हूं, अपेक्षा है ना सूक्ष्म। तो जहां सूक्ष्म अपेक्षा भी रही तो बादशाह कैसे हुए, लेने की भावना रही, प्राप्त करने की भावना रही तो वो बादशाह तो नहीं हुआ ना। इसलिए बेफिकर बादशाह, बादशाह माना ऐसा भरपूर जो मुझे अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं, मैं देना ही जानूं, बस दाता की बच्ची हूं, मैं देना ही जानूं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या कह रहा है, बादशाह इस बात की परवाह करेगा? बादशाह इस बात की परवाह करता है क्या? अगर बादशाह ने परवाह करना चालू किया तो फिकर तो बेफिकर कहां से रहे फिर? तो इसीलिए मुझे ये परवाह नहीं है कि कौन मेरे लिए, माना मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ हो कि मुझे ये फिकर आ ही नहीं सकते कि फलाना मेरे लिए क्या सोच रहा है। ये सोचना माना मुझे अपने कर्म में कहीं न कहीं डाउट है, माना मेरे कर्म में कहीं खोट है, तभी मैं सोचना चाहती हूँ या समझना कि फलाना व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फलाना व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है। तो ये पता करना, ये पूछना, ये बादशाह की क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना। बादशाह माना बादशाह, उसके अंदर वो रॉयल्टी, और वो रॉयल्टी का आधार या रियल्टी, अगर रियल्टी नहीं है, खोट है, वहां फिर अंदर में विचार चलता, फलाना क्या सोच रहा है, फलाना क्या कह रहा है, पता नहीं उसको मेरे बात ये पसंद आई नहीं आई, वो ये सब बताता है कि मेरे अंदर तो बादशाहपना नहीं है। तो बेफिक्र बादशाह माना रॉयल्टी, और रॉयल्टी का आधार है रियल्टी, रियल्टी माना कहीं पर भी खोट नहीं। अगर मुझे अपने कर्मों में डाउट है तब मैं जानने का प्रयास करती हूँ। वो तो फिर जैसे ही पता चला फलाना हाँ तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तो क्या होगा, हिल गए अंदर से, तो बेफिकर बादशाह कहाँ हुए, गरीब हो गया ना। मुझे इतना निश्चय है मेरे कर्मों में कि मैंने श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया है। जैसे ब्रह्मा बाबा किसी को पूछता था, कभी कोई दादियों ने सुना है कि बाबा ने हमसे पूछा था भाई पता करो फलाना क्या मेरे लिए कह रहा है। अगर न्यूज़पेपर में उल्टा छपा भी तो भी बाबा ने क्या कहा, उसको टोली दे के आओ, थैंक्स मान के आओ उसको। बच्चों को गुस्सा चढ़ रहा था, बाबा उसने ऐसा ऐसा लिखा है पेपर में, बाबा ने कहा बच्चे उसको थैंक्स दो, टोली दो। कैसे, क्यों टोली देवे उसको, उसने उल्टा लिखा फिर टोली क्यों देवे उसको। बाबा ने क्या कहा, बच्चे इतना पेज छापने के लिए कितना रुपया लगता था, तुम्हें अपनी बात छापने के लिए, और अच्छी बात तुम छापते थे, एक तो पैसा भी देते, लोग पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन उसने उल्टा छापा ना, लोग ध्यान से पढ़ते हैं और सोचते हैं चलो जाके देखे तो सही, तो देखने आएंगे ना, जब यहां आएंगे देखेंगे, यहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं, तो हो सकता है बच्चा बन जाए फ्री में। इतना बल, इतना कॉलम छपाने के लिए तुम्हें, तुम्हारी अच्छी बात छपाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता था, कितना हजार रुपया देना पड़ता था, तब जाके इतनी कॉलम तुम्हारी छापते थे, इतनी बड़ी कॉलम आई है ना, और तुम अच्छी अच्छी बातें अंदर लिखते थे तो कोई नहीं पढ़ता था, है ना। और जब लोग पढ़ेंगे, और कईयों के उसमें से 50% के मन में भी ये विचार आए, जाए तो सही, देखे तो सही, सही है या नहीं है, और आएंगे और यहां ऐसा कुछ देखेंगे ही नहीं, इतना विश्वास बाबा को कि यहां ऐसा कुछ देखना ही नहीं है, उसको दिखेगा ही नहीं क्योंकि ऐसा है ही नहीं यहां पर, और जब यहाँ आएंगे अच्छी बातें ही देखेंगे तो कहेंगे कौन ऐसा मूर्ख था जिसने ऐसा लिखा था, उसको गाली देगा और उसकी तो सेवा हो गई, वो बच्चा बन गया। 50% भी बच्चे बन गए तो उसको टोली देना ये तो बहुत कम हो गई ना बात, टोली देना तो बहुत कम बात हो गई। तो ये बात है, तो बाबा को इतना विश्वास था, लेकिन हमें अपने कर्मों पर इतना विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट है, तो इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। इसलिए कहा निश्चय बुद्धि ही बेफिक्र बादशाह बन सकता है। जहां डाउट आया मुझे अपने कर्मों में, पता नहीं मैंने ये किया तो है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और उसको जानने का प्रयत्न मैं करना शुरू करूं, अरे मैंने जब श्रीमत विरुद्ध कोई काम ही नहीं किया है तो मुझे चिंता रखने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं सही हूँ, बाबा के कहने पर मैंने किया है तो मुझे डाउट रखने की जरूरत नहीं। अगर वो उल्टा सीधा बोलता भी है तो उसकी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, उसकी परिपक्वता की कमी है, या ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है या परिपक्वता की कमी है, तभी वो ऐसा बोलता है या कहता है। मैं अगर निश्चय बुद्धि बन करके बाबा की श्रीमत को अमृत वेले से रात तक एक्यूरेट फॉलो कर रही हूँ तो मुझे चिंता करने की जरूरत है? बाबा के कदम पर कदम रख करके मैं चल रही हूँ तो मुझे चिंता करने की जरूरत है? ये निश्चय बुद्धि है ना? बेफिक्र बादशाह उसी का नाम। इसलिए बाबा कहे इतना सहज है, कदम पर कदम ही तो रखते जाना है, उसमें क्यों इतना सोच चलता है? सोच तो तभी चलता है ना, मुझे अपनी क्षमता पर डाउट है, अपनी कैपेसिटी पर मुझे विश्वास नहीं है, इसीलिए मुझे डाउट आता है, पता नहीं रख पाए नहीं रख पाए कदम पर कदम, पता नहीं चल पाए नहीं चल पाए। तो यही तो फिकर का कारण है, यही तो हमारी स्थिति को नीचे ले आता है। तो बेफिकर बादशाह माना अधिकारी, अधिकारी जहां हमें अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो तो व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन जाओ, बादशाह माना ही अधिकारी, लेकिन यथार्थ बादशाह घमंड में नहीं आता है अधिकारी होते हुए भी, यथार्थ बादशाह उतना ही विनय और नम्र, वो पेश भी आता है तो भी विनय के साथ, माना डिवाइन मैनर्स के साथ और निर्माणता। तो अधिकारी होते हुए घमंड में नहीं, जैसे विनय के साथ, माने इतनी रॉयल्टी डिवाइन मैनर्स के साथ और नम्रता उसके अंदर इतनी रहेंगी, वो है बेफिक्र बादशाह संगम का, संगम का बादशाह है वो। जहां घमंड आया वही तो अधीनता हो गई ना, फिर से अधीनता आ गई, घमंड में आना माना ही अधीनता। तो जहां घमंड ही न हो वही बादशाह है, तो कहीं पर भी वो घमंड न हो, अहंकार न हो, देह अभिमान न हो, वो बादशाह है। इसीलिए संगम युग की बेफिक्र बादशाह की स्थिति इतनी ऊंची है, जो कहीं पर भी अलबेले होने नहीं देती है। बादशाह का मतलब ये नहीं कि अलबेले हो जाओ, नहीं, बेफिक्र बादशाह का मतलब है हर वक्त सावधान भी है कि मेरा विनय के साथ, विवेक के साथ नम्रता वाला व्यवहार है। यही तो बाबा कहते प्रभाव डालता है। बादशाह का हमेशा प्रभाव होता है। ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन में भी जितनी बाबा के अंदर रॉयल्टी और निर्माणता थी, विनय और विवेक था, इसी कारण तो राजा लोग भी कहते थे कि भगवान से गलती हो गई, हमें राजा बना दिया, अब राजा की क्वालिटीज तो आप में है। तो लौकिक जीवन भी बाबा का इतना ऊंचा था माना, क्योंकि निर्माणता थी। बाबा के जीवन में कभी घमंड नहीं था, और इसीलिए तो भगवान का चोजन वन कि परमात्मा ने भी उसको चुन लिया। तो ऐसे बाबा भी मुझे कोई ना कोई विशेष सेवा में निमित या चोजन वन तब बनेंगे हम भी जब उतना ही विवेक और विनय, नम्रता और रॉयल्टी हमारे अंदर होंगी। तब बाबा भी बहुत ऊंचे कार्य के लिए मुझे निमित बनाएगा, चोजन वन हो जाएंगे। उसी का नाम बाप समान है। बाप समान माना कोई हम ब्रह्मा बाबा को साइड करके वो सीट लेवे ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके जैसे, हर बात में उसके जैसे। तो ये लाइफ में भी हमें ऐसा बनना, अगर अज्ञान काल में भी बाबा की लाइफ ऐसी थी, इतनी रॉयल्टी वाली थी कि राजा लोग भी महसूस करते थे कि भगवान से गलती हो गई, उनका व्यवहार देख करके, तो ज्ञान में आने के बाद बाबा का व्यवहार किस प्रकार का होगा। वो चीज मुझे अपने जीवन में ले आनी है, तब बेफिक्र बादशाह कहलाएंगे। ज्ञान गुण शक्ति आदि से स्वयं को इस तरह से भरपूर करते जाए, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ और क्या चीज होती है? पुरुषार्थ और क्या चीज है? इन्हीं बातों को इतना नेचुरल हम अपने जीवन में ले आए, यही पुरुषार्थ है। जो हर वक्त हर घड़ी हमें जैसे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ाता जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं 10 घंटा बैठ के योग लगाऊं, ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी व्यवहार कुशलता जितनी है, बादशाह माना ही सबके बीच में रहने वाला, संन्यास लेने वाला तो नहीं, अलग रहना इसको बादशाह नहीं कहता है, लेकिन जो सबके बीच में रहता है और व्यवहार कुशल है, तो ये है संगम युग की विशेषता। नेचुरल पुरुषार्थ होता जाए। मेहनत वाले योगी बाबा को भी पसंद नहीं है, नेचुरल योगी बाबा को पसंद है, सहज योग। और जितना मेरा कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यवहार कुशलता मेरी होगी, किसी को मेरे द्वारा दुख नहीं मिल रहा हो, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं मिल रही है, इससे ऊंचा पुरुषार्थ और क्या हो सकता है? 10 घंटा मैं ही बैठ के योग करूं और मेरे द्वारा उठने के बाद या मेरे बैठने समय में भी 10 लोगों को तकलीफ हो रही हो, तो बादशाह तो नहीं हुआ। ये है नेचुरल योगी। ठीक है, तो संगम योगी जीवन इतनी वरदानी है, इतनी श्रेष्ठ है, हर पल उसी अनुसार उसको जीते जाए, और तभी हम साक्षात्कार बाबा का अपने जीवन द्वारा दुनिया को भी करा सकेंगे। ये लोग देखकर कहे कि इतना परिवर्तन कैसे है, और इतनी खुशी आपके चेहरे पर कैसे, इतना निश्चिंतपना कैसे, ये चीजें लोगों को साक्षात्कार कराएगी, ये चीजें लोगों को साक्षात्कार कराएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो ये गीत गाते रहना, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बस है ना।
ओम शांति। दीदी के जब क्लासेस सुन रहे थे तो जैसे भक्ति की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्लास सुन करके महसूस हो रहा था कि जैसे भक्ति की समाप्ति हो रही है। ऐसे तो कल समाप्ति का दिन है, आज महसूस हो रहा था कि दीदी ने सभी, जैसे कोई भी जीवन में परिस्थिति आए, सभी परिस्थितियों से मुक्त कर दिया। दीदी की क्लास की एक बात जो मैंने बहुत कुछ साल पहले मैंने सुनी थी, दीदी के साथ शेयर करूंगी कि दीदी एक बार शांतिवन में क्लास करा रहे थे। जब हम ज्ञान में शुरू में आए तो कोई भी परिस्थिति आती थी जीवन में तो बाबा हमेशा मुरली में एक पॉइंट कहता है, ड्रामा। तो मुझे बहुत संकल्प चलता था कि बाबा हमेशा ऐसे क्यों कहता कि जहां पे हम एकदम फुल स्टॉप हो जाते, कुछ अंदर से करना भी चाहे तो भी कर नहीं सकते। तो दीदी ने उस क्लास के अंदर बहुत एक अच्छी बात सुनाई थी जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। दीदी ने कहा था कि इस ड्रामा के अंदर हमारी तीन माँ है। हाँ दीदी, एक जो है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा के पीछे भी क्या आता है? माँ। एक हमारी मम्मा और ड्रामा। तो दीदी ने बहुत अच्छी रीति से उस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था कैसे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है। जैसे दीदी ने लौकिक का एग्जांपल दिया था कि लौकिक में जब कोई परिस्थिति आती है और बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है तो पिता उसको कहाँ भेजता है? माँ के पास। तो उसी प्रकार से इस ड्रामा, बेहद ड्रामा के अंदर विश्व बाबा हमारा पिता है और ड्रामा हमारी क्या है? माँ है। तो ऐसे सुंदर रीति से दीदी ने क्लास में उस समय एक्सप्लेन किया था। दीदी और दीदी ने अपने क्लास के अंदर ज्ञान को भी बाबा हमेशा कहता है ना, ब्रह्मा भोजन। तो आज हमने ये भोजन भी खाया। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी इसके बाद सभी लंच पे जाएंगे। और मम्मा का एग्जांपल देकर दीदी ने हलवा भी ज्ञान रूपी हलवा भी खिला दिया। खुशबू बहुत आ रही थी। अच्छा, इच्छा हो रही है फिर से दीदी को बॉम्बे में निमंत्रण देंगे।
देखेंगे कल, वहाँ नीचे है ये अपने कल्चरल में है तो किस अनुसार टाइम मिलता है कैसे देखें। शाम को क्या है कि ये मधुबन रेडियो वालों ने एक 2 महीने पहले से ऐलान किया था कि मेरी आवाज की पहचान, तो आसपास जितने भी गांव वाले हैं तो उसमें से कंपटीशन रखा है, तो करीबन काफी लोग आ रहे हैं उस, तो उसमें मुझे जज बना है, तो शाम को जज बन करके बैठना है उधर। गांव वालों को एक प्रोत्साहन देना है तो इसीलिए वहां पर रहना पड़ेगा मुझे। बीएस मेमोरियल स्कूल में ये प्रोग्राम है 4 बजे से। हाँ, परसों मुझे जाना है गांधीनगर, गांधीनगर में प्रोग्राम है। हाँ जी, जरूर 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 है, मैंने परसों तो मुझे जाना है, गांधीनगर में प्रोग्राम है 2 दिन का, इसीलिए वहां जाकर के फिर 7 तारीख वापस लौटना है ना।
दीदी का
बोरीवली में जरूर जरूर, तो स्पेशल टाइम निकाल के आएंगे तो जरूर अच्छा रहेगा, तो फिर कोई और कमिटमेंट नहीं होंगी। यहाँ रहते हैं तो यहाँ तो 10 कमिटमेंट्स रखनी पड़ती है क्योंकि बेहद का घर है ना, तो इतनी सेवाएं चल रही है, तो सेवाओं के बीच में और उसके बावजूद ऊपर नीचे जो भी नीचे ग्रुप्स आए हैं, कितने ग्रुप्स को मिलने का टाइमिंग दिया हुआ है ना। और फिर हाँ यूथ का शुरू हो जाएगा 6 तारीख से, तो लेकिन तब तक तो हम वापस आ जाएंगे, 8-7 को वापस आ जाएंगे। हाँ जी जरूर जरूर।
दीदी के क्लासेस को कविताओं में समराइज किया है, दिल में है अनुराग, वाणी में है मधुराग, उषा दीदी सभी को अति भाए भाए ना खुशियों की बदरी बनकर हर दिल पर है छाए, समय की बहती धारा में मुस्का के बढ़ जाना है, धैर्य का दामन थाम कर मंजिल तक पहुंचाना है, ये सबक सभी को सिखा दिया, खुशियों का नया सिला दिया, ईश्वरीय सेवा में रत जीवन प्रभु याद में सफल किया। दीदी बहुत बहुत थैंक्स। 2 मिनट बाबा को याद करके फिर जाएंगे सभी।